नमो भगवते वासुदेवाय। अभीक्षण अवगा कपिसान, अभीक्षण अवगा कपिसान, जटिलान कुटिल अलकान, जटिलान कुटिल अलकान, आत्मानानम चोग्रु तपसा। अनुवाद एवं तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, वे तीन बार स्नान करने लगी और इस तरह उनके घुंघराले काले काले बाल क्रमशः भूरे पड़ गए। तपस्या के कारण उनका शरीर धीरे धीरे दुबला हो गया और वे पुराने वस्त्र धारण किए रही। तात्पर्य, योगी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी दिन में कम से कम तीन बार प्रातः, मध्यान्ह तथा सायंकाल स्नान करते हैं। यहाँ तक कि कुछ गृहस्थ विशेष रूप से ब्राह्मण भी इसका पालन करते हैं। देहूति एक राजा की पुत्री और राजा तुल्य की पत्नी थी। यद्यपि कर्दम मुनि राजा न थे, किंतु अपने योग से उन्होंने देवहूति को दासियों समेत तथा समस्त ऐश्वर्य के साथ रखा। किंतु उन्होंने अपने पति के रहते ही तपस्या सीख ली, अतः उन्हें संयम बरतने में कोई कठिनाई नहीं हुई। फिर भी अपने पति तथा पुत्र के चले जाने के बाद उन्हें कठिन तपस्या करनी पड़ी, जिससे वे दुर्बल हो गईं। आध्यात्मिक जीवन में अधिक मोटा होना अच्छा नहीं है, अपितु मनुष्य को दुर्बल होना चाहिए, क्योंकि मोटा होने पर आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति में बाधा पहुंचती है। मनुष्य को ना तो अधिक खाना चाहिए, ना अधिक सोना चाहिए, ना अधिक आराम करना चाहिए। ऐच्छिक रूप से मनुष्य को कम भोजन करना चाहिए तथा कम सोना चाहिए, और ये ही किसी योग के साधन की विधियां हैं। चाहे वह भक्ति योग हो, चाहे वह ज्ञान योग हो, चाहे वह हठ योग। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्री युद्धपद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम सावदेतम सावधूतम परजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण रघुनाथ सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो श्री राधा कांतो नमोस्तु। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीत नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो ये जो अध्याय 33वां और स्कंद तीसरा जो चल रहा है, इसमें भगवान कपिल देव के कार्यकलाप हैं। और इससे पहला जो अध्याय था उसमें भगवान कपिल देव ने माँ देहूति के लिए शिक्षाएं दिया है, सांख्य योग का उपदेश दिया है। देखिए, भगवान जब भी धराधाम पर आते हैं तो कोई विशेष उद्देश्य लेकर के आते हैं। अकारण भगवान कभी भी अवतरित नहीं होते। तो यहां भगवान कपिलदेव आए हैं तो विशेष उद्देश्य लेकर के ही आए हैं। भगवान बलराम जी आए, भगवान कृष्ण आए, भगवान राम आए, तो इन सब का एक विशेष उद्देश्य था। और ये किसी ना किसी भक्त को माध्यम बना करके और वो हमें उपदेश देते हैं, हमें हमारे जीवन से जो जुड़ा हुआ सत्य है, जो जीवन का लक्ष्य है, उसको बताते हैं। तो यहां भगवान कपिल देव जी आए और उन्होंने सांख्य योग का उपदेश दिया। किसके लिए दिया? माँ देहूति के लिए। लेकिन सत्यता यह है कि वो माँ देहूति को केवल माध्यम बनाए और उनको माध्यम बना के वो उपदेश हम सबके लिए दिए। हमारे शास्त्रों में ऐसे कई वर्णन आते हैं। भगवान बलराम जी आए, जैसा कभी 2-3 दिन पहले हम क्लास में सुन रहे थे कि बलराम जी किस उद्देश्य से आए, नित्यानंद महाप्रभु किस उद्देश्य से आए, चैतन्य महाप्रभु किस उद्देश्य से आए। उनका एक विशेष उद्देश्य होता है, विशेष, क्योंकि भगवान के जन्म और कर्म ये दोनों ही क्या हैं? दिव्य हैं। अगर वो अवतार ग्रहण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके शब्दों में, उनकी प्रीचिंग में दिव्यता है। भगवान बलराम जी आए और आके कहाँ गए? तीर्थ क्षेत्रों में। उन्होंने सब तीर्थों को पवित्र किया। चैतन्य महाप्रभु विश्व रूप रूप में ग्रह त्याग किया। तो सभी जितने भी उन्होंने अवतार ग्रहण किए उनका एक उद्देश्य होता है। तो यहां पर भी उनका एक उद्देश्य था, सांख्य योग का उपदेश देना। और सांख्य योग का उपदेश अपनी माँ देहूति को दिया। तो माँ देहूति, हम जो अध्याय पढ़ रहे हैं, जो 32वां अध्याय है, 33वां अध्याय है, इसको थोड़ा शॉर्ट में एक बार समझेंगे कि माँ देहूति के लिए जैसे ही उनके पिताजी ने कर्दम ऋषि के साथ उनका संबंध किया, तो कर्दम ऋषि के साथ उनके चरणों में उन्होंने ठीक ठीक जो पत्नी का धर्म होता है वो निर्वाह किया। और कर्दम ऋषि, क्योंकि वो भगवान का भजन करना चाहते थे, भगवान को अच्छी तरह जानते थे, तो वो चाहते थे कि मैं अधिक से अधिक भगवान का भजन करूं। लेकिन चूंकि भगवान का आदेश था कि आप मनु महाराज आ रहे हैं, उनकी कन्या के साथ आप पानी ग्रहण कीजिए, मैं पुत्र के रूप में आऊंगा, ये सब वृतांत भगवान ने उनको बताया, इसलिए उन्होंने शादी करने के लिए हाँ किया। शादी करने के बाद वो अपने ध्यान में मग्न हो गए और भगवान का चिंतन करने लगे। वर्षों गुजर गए, काफी दिन निकल गए। उसके बाद में एक दिन अचानक उनका ध्यान टूटा और उन्होंने देखा कि माँ देहूति की तरफ। तो माँ देहूति उनकी सेवा में इतनी मग्न थी, ना समय पे किसी प्रकार की कोई सुविधा जो उनको वहां मिलती थी राजकुमारी के रूप में या नहीं थी, तो दुबली पतली एकदम कंकाल जैसे हो गई। तो जब मुनि ने देखा कि देहूति की ये स्थिति, तो उन्होंने कहा, देखिए आपने मेरी साधना में जो आप साधक सिद्ध हुई हैं, जो मेरी साधना में आपने सहयोग दिया है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूं। आप चाहें तो कुछ मुझसे मांग सकते हैं। तो पत्नी की दो इच्छाएं प्रबल होती हैं, जैसा कि वर्णन किया गया है पिछले अध्याय में। पहली इच्छा होती है सुंदर पति मिले और दूसरी इच्छा होती है सुंदर पुत्र मिले, अच्छा पुत्र मिले, अच्छे पति और पुत्र, ये दो इच्छाएं प्रबल होती हैं। तो देवती ने इशारा देते हुए कहा कि अच्छे पति की जो इच्छा थी वो तो पूर्ति हो गई, लेकिन अच्छे पुत्र, तो जैसे ही कहा तो कर्दम जी समझ गए तो कर्दम जी ने अपने तपोबल से एक विमान की रचना किया जिसमें सभी सुविधाएं थीं और उस विमान में प्रवेश किया। दाम्पत्य जीवन के कारण उनके संतान की उत्पत्ति हुई, नौ कन्याएं हुई और दसवें जो थे स्वयं भगवान कपिल देव कपिल के रूप में आए। बोलो कपिल देव भगवान की। तो जब वो आ गए तो उस समय उनको स्मरण आया कि उन्होंने कहा था कि मैं भगवान के रूप में आऊंगा। तो जैसे ही स्मरण आया तो ग्रह त्यागने लगे और कहने लगे, देवी अब मैं वन को तपस्या के लिए जा रहा हूं। काफी समझाया माँ देवती ने कि देखिए आप तो वैसे भी तपस्या कर ही रहे हैं, मैं तो किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं डाल रही हूं और वैसे भी बिना आपके मेरा जीवन तो बहुत अधूरा हो जाएगा। वो अपनी सोच के अनुसार उनको समझाने लगी और कहने लगी कि प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोको सुखद कतो कछु नाही। हे प्रभु, हे मेरे प्राणनाथ, आपके बगैर तो इस जग में मेरा कोई है ही नहीं और मुझे सुख मिलेगा कहां से आपके बगैर। जिए बिन दे नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। कहती हैं कि जैसे देह के बिना, जैसे प्राण के बिना देह बेकार है, अगर प्राण निकल जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, डेड बॉडी, मृतक शरीर, और जला देते हैं, दफना देते हैं, जो जो क्रिया जिस धर्म में होती है कर देते हैं। लेकिन जब तक प्राण है तभी इस शरीर की वैल्यू है, तभी तक इसका अस्तित्व है। और अगर नदी में जल नहीं है तो उसका क्या वैल्यू है। तैसे ही नाथ, हे प्रभु, हे मेरे भगवान, हे मेरे प्राणनाथ, वैसे ही पुरुष के बिना नारी है। अगर आप चले जाएंगे मुझे छोड़ करके तो मैं कैसे, किस प्रकार से सुख का अनुभव करूंगी, मैं किस प्रकार से अपना जीवन जीऊंगी। लेकिन कर्दम जी तो वो समझाने लगे उनको, जब समझाने लगे तो उन्होंने देखा कि अब ये नहीं मानेंगे तो सोच रही हैं और अपने आप को धिक्कार रही हैं और कह रही हैं कि ने यत कर्म धमाए ना विराग आए कल्पते, न तीर्थ पर्त सेवाए जीवन नपी मृतो ही सह। कहते हैं कि ना तो मैंने धर्म का आचरण किया और ना वैरागी हुआ, ना भगवत चर्चा ही हुई मुझसे, और ऐसा जीवन मेरा कैसा है, एक मृतवत है। इतना महाज्ञानी देव तुल्य मेरा पुरुष, मेरा पति जो देव के तुल्य है, महाज्ञानी है, और उसका सानिध्य पाकर के भी मैं कुछ भी उनसे हासिल नहीं कर पाई। हाय हाय विधाता, हाय हाय मेरे भाग्य की सराहना कर रही अपने की, हाय हाय मेरा कैसा भाग निकला, मैं नदी के किनारे रह करके भी प्यासी रह गई। और वो कह रही हैं, जब ये बात देखा तो उन्होंने कहा, हे प्राणनाथ आप मत जाइए, आपके बगैर मेरा कोई नहीं है। तो जब ये बात सुना तब तभी कर्दम ऋषि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा आप अकेली कहां हैं, बार बार कह रहे हैं कि मेरा कोई नहीं, मेरा साक्षात परम ब्रह्म कपिल देव के रूप में आपके सामने है, आप अकेली कहां हैं, ये समझा रहे हैं। और ये क्या है, आपका हमारा कुलभूषण है ये। तो जैसे कुलभूषण कहा तो मां ने क्या कहा, नक्षत्र भूषणम चंद्र है नारी नाम भूषणम पति। हे भगवान, हे मेरे प्राणनाथ, आप भूल रहे हैं, नक्षत्रों का भूषण कौन होता है, चंद्रमा। ऐसे ही नारी का भूषण कौन है, पति, नारी नाम भूषणम पति। तो कर्दम जी एक सेकंड के लिए थोड़ा रुके और कहने लगे, हे देवी आप कहीं भूल रही हैं, कहीं भूल कर रही हैं आप, इससे आगे भी कुछ है। जैसा कि हम पिछले अध्याय में सुने कि प्राय करके लोग समझते हैं कि स्वर्ग ही सब कुछ है, बस स्वर्ग तक हमको जाना है, स्वर्गीय पिताजी के नाम के आगे लिख देते हैं, अपने भाई ब्रदर जो भी स्वर्गीय होते हैं उनके सामने लिख देते हैं, लेकिन उससे ऊपर उनको ज्ञान नहीं है कि उससे ऊपर भी कोई है। महात्माओं को थोड़ा ज्ञान होता है, वो लिखते हैं ब्रह्मलीन, उनको ब्रह्म तक ज्ञान है। तो उन्होंने कहा कि आपको इतना ही ज्ञान है कि नक्षत्र भूषणम चंद्र है और नारी नाम भूषणम पति, यही आपको ज्ञान है, इससे आगे भी है। तो उन्होंने बताया क्या, वो कहते हैं कि सर्वस्य भूषणम जगतपति, भगवान सभी का भूषण है, जगतपति सभी का भूषण है, आप ये ना भूलें। और ये समझा करके उनको वन के लिए चले गए। और जब चले गए तो हमारे शास्त्रों में 6 प्रकार के दर्शनों का वर्णन है। 6 प्रकार के दर्शन कौन कौन से हैं? पहला है सांख्य योग, और सभी दर्शनों के अलग अलग आचार्य हैं। सांख्य योग के आचार्य हैं भगवान कपिलदेव। और दूसरा है योग, जिसके पतंजलि। तीसरा है न्याय, जिनके गौतम ऋषि। और चौथा है वैरोसिक, जिनके आचार्य महर्षि गड़ाद। पांचवा है पूर्व विमंसा, जिनके आचार्य जैमिनी ऋषि। और छठवा है उत्तर विमंसा, जिनके आचार्य भगवान वेदव्यास जी। और एक स्वतंत्र दर्शन है, उसका नाम क्या है? भक्ति योग। इसके भी आचार्य हैं। इसके आचार्य कौन है? नारद जी। तो भक्ति कब होती है, किस प्रकार से होती है? जो व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त नहीं होता, अर्थात राग द्वेष में ही रहता है, उसका क्या होता है? उसका असंतुलन बना रहता है। राग द्वेष से असंतुलन पैदा होता है, और असंतुलन भक्ति में बाधा डालता है, वो भक्ति नहीं कर सकता। और असंतुलन को दूर करने के लिए राग द्वेष से मुक्त होना पड़ेगा। योग का अर्थ होता है जोड़ना। किससे जोड़ना? भगवान से जोड़ना। और भगवान से जुड़े रहने पर क्या होता है? संतुलन बना रहता है। जब संतुलन रहेगा तो भक्ति अच्छी होगी, और संतुलन से सुर पैदा होता है, असंतुलन से सुर पैदा नहीं होता। किसी ने आपकी स्तुति की तो राग पैदा हो जाएगा, किसी ने आपकी निंदा की तो द्वेष पैदा हो जाएगा, और ये दोनों जब पैदा होंगे तो असंतुलन हो जाएगा, और असंतुलन बाधा में विघ्न डालता है। तो बता रहे हैं प्रभुपाद जी ने कहा है कि जीवन में जो अति हैं, अतियों को मिटाओ। जब तक जीवन में से अति नहीं मिटेंगी तब तक जीवन में संतुलन नहीं आएगा, आप भक्ति नहीं कर सकते, आप योगी नहीं बन सकते, आप जुड़ नहीं सकते भगवान से। अति क्या है? अति खाना, अत्याहार है, प्रयास है, प्रजल बोने में आग्रह, जनसंगत से लोलस, ये 6 जो भक्ति के विनाश होने के जो लक्षण है, सर्व भक्ति विनश्य थी। अत्याहार क्या है? अधिक खाना अत्याहार कहलाता है। देखिए, खाने को अत्याहार कह दिया, लेकिन अत्याहार हर इंद्रिय का है, आंखों का भी अत्याहार होता है, देखने का भी अत्याहार होता है, सूंघने का भी अत्याहार होता है। अब ज्यादा सूंघेंगे बीमार हो जाएंगे, एक बार ज्यादा देखेंगे किसी, ज्यादा देखते रहेंगे देखते रहेंगे, ज्यादा बोलते रहेंगे, अति नहीं, ये सब अत्याहार में आते हैं। अधिक सुनते रहेंगे, हमेशा सुनते सुनते रहो, हमेशा ही सुनते रहो, ये कानों का अत्याहार होता है। प्रजल्वों की बातों को सुन रहे हैं, अत्याहार होता है। और अधिक सोना, अधिक खाना, अति आलसी होना, अति काम करने वाला भी योगी नहीं बन सकता, अति प्रमादी भी व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। कोई भी निंदा करे, कोई स्तुति करे, उससे भी हमें बचना चाहिए। क्यों? कि भगवान की भक्ति में ये सब चीजें बाधा डालती हैं। अब एक बात, दूसरी बात क्या है कि भगवान की भक्ति करते समय हमें, कई लोग बोलते हैं घर छोड़ दो, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपना उत्तरदायित्व जो है उसे निभाते हुए, कई बोलते हैं परिवार को छोड़ दो, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो, प्रेमियों को छोड़ दो, छोड़ना चाहिए, लेकिन किस चीज को छोड़ना चाहिए? उन प्रेमियों में जो आसक्ति है, परिवार में जो आसक्ति है, उस आसक्ति के लिए भगवान कहते हैं छोड़ दो। प्रभुपाद जी कहते हैं उस आसक्ति को छोड़ो। जब तक परिवार से जुड़ी हुई आसक्ति आपसे नहीं छूटेगी तब तक आप भक्ति में अग्रसर नहीं होंगे। और इसमें एक विशेष बात क्या है? इसमें एक विशेष बात यह है कि अपने अधिकार का त्याग करना। आसक्ति कैसे छूटेगी? अपने अधिकार का त्याग करना और दूसरे के अधिकार का रक्षा करना, उसको सम्मान देना, दूसरे के अधिकार की सुरक्षा करना और अपने अधिकार का त्याग करना, ये क्या है? ये भक्ति में अग्रसर होने का एक दूसरा उपाय है। अपने अधिकार का त्याग, दूसरे का अधिकार सुरक्षा, ये क्या है? देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं बताता हूं। कोई भी पति अपनी पत्नी के लिए धोती लाया और लाके दे दिया और उन्होंने देखा कि उसी समय क्या हो रहा है, उसी समय वहां पुत्र वधू भी बैठी है। अब अपनी पत्नी है और एक पुत्र वधू है, दोनों बैठी हैं, लाके धोती दिया। उन्होंने क्या किया, उस धोती को लेके धीरे से दबाया और अंदर जाके बॉक्स के अंदर डाल के लॉक कर दिया। तो अगर ऐसी स्थिति हमारे आपके सामने हो तो जो पुत्र वधू है वो क्या सोचेगी, वो ये सोचेगी कि देखा पिताजी कुछ लाए और माताजी को दे दिया, लाए थे लेकिन माताजी को दे दिया। अपने पति को शिकायत करेगी, धीरे धीरे वो एक द्वेष बढ़ेगा और द्वेष बढ़ेगा तो उसका असंतुलन पैदा हो जाएगा परिवार में। अब माता को क्या करना चाहिए था, माता को जैसे ही उसका अधिकार मिला तो माता को चाहिए कि बेटी ये लो, इसको खोलो, इसमें धोती है और देखो कैसी है, आप पहन के देखो। पुत्र वधु क्या बोले, नहीं माता जी आप देखिए, नहीं नहीं आप देखिए, नहीं नहीं आप देखिए, एक दूसरे के अधिकार की सुरक्षा कर रहे हैं। क्या होगा, उससे प्रेम बढ़ेगा, राग द्वेष नहीं, प्रेम बढ़ेगा। और जब प्रेम बढ़ेगा तो क्या होगा, भक्ति दृढ़ होगी। छोटी चीज है लेकिन मरम की है। जब प्रेम कब बढ़ेगा, जब त्याग दिया उन्होंने, नहीं माता जी आप पहने पहनिए, नहीं बेटी आप पहनो। आजकल जो झगड़ा चल रहा है वो अपने अधिकार को लेके ही चल रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा अधिकार है, ये तो मैं हूं, मैं आ गया। दोनों भाइयों में जो झगड़ा चल रहा है अधिकार लेके चल रहा है, मेरा इतना है, तेरा इतना है, मेरा इतना है, उससे राग द्वेष पैदा हो रहा है। और आप आचार्यों को देखो ना, भगवान राम को देखो, भगवान भरत को देखो, उनमें भी तो झगड़ा ही था दोनों भाइयों में, लेकिन किसको लेके था, राज्य को ही लेके था। क्या, नहीं महाराज आप बैठिए सीट पे, नहीं नहीं आप बैठिए, नहीं मैं कैसे बैठ सकता हूं, आप बैठिए। वो भी झगड़ा था दोनों का अधिकार के लिए, नहीं ये आपका अधिकार है, कि नहीं नहीं माँ ने कहा आपका अधिकार है, नहीं नहीं आप बड़े हैं आपका अधिकार है। कितना प्रेम हुआ, अगाध प्रेम। भगवान ने यहां तक कह दिया, जब हनुमान जी ने सेवा किया हनुमान जी ने, तो हनुमान जी को क्या उपमा दिया कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। कैसे भाई है मेरे, भरत जैसे, मम प्रिय है, मेरे इतने प्रिय हैं, कैसे भरत जैसे। भगवान का कितना प्रेम था भरत के प्रति, क्यों था, क्यों उन्होंने उनके अधिकार की सुरक्षा किया, अपने अधिकार का त्याग किया। और हम लोग अपने अधिकार में जुटे हुए हैं, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, ये है दूसरी बात जो भक्ति में अग्रसर करती है। और तीसरी क्या है, तीसरी बात है कि प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना और अप्राप्त परिस्थिति का चिंतन छोड़ देना। जो प्राप्त परिस्थिति है उसी में उसी समय जिस प्रकार से जीना अब जीजिए, प्रीचिंग करिए। असुविधा दिख रहा है वहां, खूब दिख रहा है कि हमको असुविधा है, फिर भी प्रभुपाद जी ने कई बार कहा है, एक रशियन भक्त थे, उन्होंने कहा कि रशिया में कैसे प्रचार करूं, बोले नहीं आप जाइए प्रचार कीजिए। बोले वहां मुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, मैं मर जाऊंगा बिना खाए। बोले मरना है तो मर जाइए, अगर कृष्ण प्रचार के लिए तुमको मरना पड़े तो आप मर जाओ, यही तो उद्देश्य है कि कृष्ण के लिए तो हमको, हम उसी के लिए तो जी रहे हैं। और एक बहुत अच्छा उन्होंने बताया एक दिन लेक्चर में कि प्रभुपाद जी ने जबरदस्ती उनको भेज दिया और वो गए और वहां जाके देखा तो आलू आलू वो खाते रहे, अब कब तक खाएंगे, बीमार हो गए। कुछ दिन के बाद जब लौटे तो यहाँ प्रभुपाद जी बैठे थे, प्रभुपाद जी देखा कि ये तो बिल्कुल कंकाल बन गए, कितना जर्जर हो गए, लेकिन खुश थे, उनके चेहरे पर तेज था, क्यों प्रचार किया उन्होंने, इतना कठिन परिश्रम करे भी उसने प्रचार किया रसिया में। तो प्रभुपाद जी ने कहा अपने जो असिस्टेंट थे सेक्रेटरी थे, भाई इनको जाओ गोविंदधाम खिलाओ, भूखे हैं, और गोविंदधाम जाके उनको बोल दिया। तो वहां देखा वहां थाली रेडी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, बैठे तो अभी आए हैं तो कुछ जब तक जलपान करेंगे, जब तक थाली तैयार हो रही है, उन्होंने लाके समोसा रख दिया, आप थोड़ा खाइए पानी पिए तब तक थाली बन रही है। तो जैसे ही समोसा को खोला तो उसमें आलू, तो एकदम घबरा गया, आलू, क्योंकि आलू से तो भय खा के वहां से ही आया था। तो ये सत्य घटना है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग जिस स्थिति में हैं, अपनी जो भी प्राप्त परिस्थिति है उसका सदुपयोग करना है, और अप्राप्त जो परिस्थिति है उसका चिंतन बिल्कुल छोड़ देना है। भगवान कपिल देव कहते हैं कि मां, ये जो वासना है, जब तक वासना है तब तक ये बंधन है। बंधन कब तक है? जब तक वासना है। जब तक वासना रहेगी बंधन नहीं हट सकता। और इसको मिटाने के लिए क्या करना है? वासना को मिटाने के लिए उपासना अनिवार्य है। जब हम कर्म करते समय कर्म फल की वासना मिट जाए, हम कर्म कर रहे हैं, कर्म करते समय कर्म फल की वासना मिट गई, तो वो कर्म उपासना बन जाता है। वो फिर कर्म नहीं रहता, वो उपासना बन जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे आपने देखा है नारियल में, जब तक जल रहता है तब तक नारियल उसके अंदर कैद रहता है, गोला उसके अंदर कैद रहता है। कब तक? जब तक उसके अंदर जल रहता है। और जैसे ही जल सूख जाएगा तो नारियल को फोड़ के गोला को कैद मुक्त कर देते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन जब तक जल नहीं सूखेगा, वासना का जल रहता है। ऐसे ही मनुष्य में ये वासना का जल है, जब तक ये वासना नहीं जाएंगी वो भक्ति में अग्रसर नहीं होगा। जीव की वासना क्या है? ये जब तक नहीं मिटेगी, जब तक आत्मा इसके अंदर कैद रहेगी, और ये वासना मिट जाएगी तो आत्मा क्या होगी? प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाएगी। ये आत्मा तब तक ही है जब तक इस शरीर में वासना का वास है। देखिए, कोई व्यक्ति को आपने देखा होगा, उदाहरण के तौर पे किसी व्यक्ति को बांध दो आप बंधन में, उसको छुड़ाने के तीन उपाय होते हैं। पहला उपाय है कि व्यक्ति बहुत मजबूत है, ताकतवर है, ताकत लगाए तोड़ दे उस बंधन को, वो मुक्त हो जाएगा ताकत लगा के। कई बार गाय भैंस को देखा गया है ताकत लगा के रस्सी तोड़ देती है, अपना बंधन तोड़ देती है। तो या तो आप जो बंधन में बंधे हैं इतनी ताकत हो आपके अंदर कि बंधन को तोड़ दो ताकत लगा के, तो आप बंधन मुक्त हो जाएंगे। और ये ताकत लगा के तोड़ना, ये कैसा बंधन है? ये ज्ञान का बंधन है। ये वासनाओं का जल ज्ञान के माध्यम से सूख जाएगा, उस बंधन से वो मुक्त हो जाएगा व्यक्ति। और दूसरा बंधन क्या है? दूसरा बंधन ये है कि या अगर ताकत नहीं है, दुबले पतले, तोड़ नहीं सकते, रस्सी मजबूत है बंधन में, तो बंधन तो बंधन ही है। तो उस समय क्या करेंगे हम? इतने सिकुड़ जाओ, इतना सिकुड़ जाओ कि बंधन ढीला पड़ जाए। और ढीला पड़ गया बंधन बना रहे उसके होकर निकल गए, इतना सिकुड़ जाओ कि बंधन ढीला पड़ जाए, तो अब बंधन मुक्त हो जाएंगे। तो सिकुड़ करके निकलना, ये कौन सा बंधन है? दासो हम, ये दासता का है, हमने दासता स्वीकार किया। कोई भी घटना हुई, आई एम सॉरी प्रभु जी, मैं आपका सेवक हूं, गलती हो गई, तो आप बंधन मुक्त हो जाओगे। और सॉरी फील नहीं करोगे, सीना तान खड़े रहोगे, नहीं नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, तो क्या होगा? बंधन में बंधे रहोगे। तो ये दासो हम का बंधन है, इसको बोलते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे परशुराम जी आए, शिव जी का धनुष तोड़ दिया, पिता स्वयंवर, शिव जी का धनुष टूट गया, परशुराम जी को मालूम पड़ा, दौड़ के आए और बस पुन पुन मोह दिखाव कुठारू, बार बार उस कुठार को दिखाने लगे। लखनलाल एकदम गर्म हुए हैं, तो लखनलाल भी कहने लगे यही धन पर मम, उन्होंने कहा बहुधनी तोरे लड़काई कबू ना आश्रित कीन गुसाई, महाराज हमने तो ऐसी कितनी धनुषियां तोड़ दी, आप तो कमाल कर रहे हैं, हम यहां सब बैठे हैं और आप तो क्रोध बढ़ाते जा रहे हैं, बोलते ही चले जा रहे हैं। अरे रे नर बालक काल बस बोलत तो ना संवार, एकदम गुस्सा कर, तुमको अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं, आप मुझे पहचान नहीं रहे, मैं परशुराम हूं, 21 बार छत्री हीन कर दिया था पृथ्वी को, और आप एक छत्री जैसे दिखाई दे रहे हैं, आप जबान पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, और क्रोध बस पुन पुन बार बार उसको कुठार को दिखा रहे हैं। जब देखा क्रोध बहुत बढ़ गया, अब बस राग शुरू हो जाएगा, झगड़ा शुरू हो जाएगा, तो भगवान राम आए और आके हाथ जोड़ करके बोले कि महाराज आप इतना गर्म मत होजिएगा, क्या है कि नाथ संबोधन भंजन हारा हो को एक दास तुम्हारा, महाराज कोई दास ही आपका एक ऐसा होगा जो धनुष को तोड़ने वाला है, और वो आपके सामने है, आप दंड निर्धारित कीजिए, मैं स्वीकार करूंगा। परशुराम जी तुरंत झुक गए, जो कि क्रोध के अवतार थे, झुक गए तुरंत। ये कह के कि इतना भारी धनुष तोड़ दिया, कितनी इसके अंदर ताकत होगी, ये क्षत्रिय का पुत्र भी है और इतना बड़ा इसने बहुत बड़ा महान कार्य कर दिया है, जो इसको कोई हिलाने वाला नहीं था, इसने तोड़ दिया, ताकत भी इसके अंदर है, लेकिन इतना नम्रता, इतना झुक गया कि हाथ जोड़ करके दंड स्वीकार करने के लिए खड़ा हो गया है, और अब मेरा दास बताता है अपने आप को। तो क्या हुआ, परमश्राम जी ने उनको माफ किया और बताया, जब समझ गया, आगे चल के बहुत लंबी स्टोरी है। तो कहने का मतलब ये है, इतना सिकुड़ जाओ कि बंधन ढीला पड़ जाए। परशुराम जी के क्रोध को शांत करना इतना आसान था क्या? लेकिन भगवान राम ने क्षण भर में शांत कर दिया। तो ये है दासोहम का बंधन। और तीसरा जो है वो क्या है, पूर्ण शरणागति। अगर व्यक्ति पूर्ण शरणागत, यानी आप खोलना चाहे खोल दो, ना खोलना चाहे तो मत खोलो, जैसी आपकी इच्छा है। बंधन में तो मैं हूं, अगर आप छोड़ना चाहे छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ना चाहे मत छोड़िए, लेकिन मैं आपको नहीं भूलूंगा, मैं पूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर हूं। यह है शरणागति का। तो भगवान राम कहते हैं, रामचरितमानस में वर्णन आता है कि मोरे प्राण तनय सम ज्ञानी, बालक सुत इव दास अमानी। वो कह रहे हैं, भगवान राम ने कहा, एक उदाहरण के तौर बताया उन्होंने, कि मेरे बड़े बेटे का नाम है, जो मेरा बड़ा बेटा है ना, वो बहुत ज्ञानी है, और ज्ञानी मीन्स जो बड़ा बेटा है वो कैसा है, कि वो अपना रक्षण करने में सक्षम है, मुझे इसकी चिंता नहीं है। क्या है कि बालक सुत इव दास अमानी, लेकिन मेरा जो छोटा पुत्र है ना, वो पूर्ण शरणागत है मेरे, मुझे उसकी चिंता रहती है और उसके लिए मैं हमेशा सोचता रहता हूं, क्योंकि वो पूर्ण तरीका से मेरे ऊपर निर्भर है। तो जो भक्त होता है उसकी रक्षा कौन करता है, भगवान करते हैं, क्यों कि भक्त हमेशा उनके ऊपर निर्भर रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से वो कह रहे हैं भगवान कपिल देव जी, हे मां, अनन्य भाव से जो मुझे भजता है, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है और मेरी भक्ति करता है, मेरे लिए जिन्होंने सभी कर्मों का त्याग किया है, मेरे लिए जिन्होंने सभी जो बंधन है, जो उनके संबंधी हैं, उनका त्याग किया है, वो मुझे प्रिय हैं। अब वही बात आ गई, संबंधी का त्याग करना, संबंधी का त्याग करना मीन्स उससे जो संबंध है, अर्थात जो आसक्ति का जो संबंध है, जो उसके साथ आपका अटैचमेंट है, संबंध कैसे जुड़ा, उससे प्रेम हुआ। लाखों करोड़ों कितनी संख्या है भारतवर्ष में, सभी के साथ तो हम सबसे नहीं जानते, सबके साथ है भी नहीं, सबका इतना नाम भी मालूम नहीं होगा, क्यों, उनके साथ हमारी आसक्ति है ही नहीं। हमारी जिसके साथ आसक्ति है उसी के साथ तो हमारा प्रेम है। तो कह रहे इन सबका त्याग करना, जिनके साथ तुम्हारा जो रिश्ता जुड़ा हुआ है, वो रिश्ते का जो मेन जो पॉइंट है, जहां वो टोचन लगा हुआ है, वो क्या है, वो है आसक्ति, उस बंधन को छोड़ देना, त्याग देना, वो मुझे प्रिय है। एक बहुत अच्छा इसमें एक वो आता है, एक दिन बता रहे थे, इसमें थोड़ा इंटेलिजेंसी यूज करना है, कि हमें आसक्ति का जो बंधन है वो किस प्रकार से छोड़ना है। एक व्यक्ति थे, वो डेली जाते थे और जाकर के 3 गिलास पी आते थे डेली। तो जब 3 गिलास पीते थे तो मालिक ने कहा कि भाई ये 3 गिलास आप अलग अलग जो ब्रांडी पीते हैं, ये क्या है। बोले हम 3 मित्र हैं और मित्र क्या, हम बिल्कुल सगे भाई के जैसे ही हैं, तीनों बहुत प्रेम है, हम लोग एक दूसरे बहुत आसक्त हैं, रह नहीं सकते, पर क्या करें, अलग अलग देशों में रहते हैं, मेरा वहां का वीजा नहीं लगा, उसका यहां का नहीं लगा, तो एक लंदन रहता है, एक अमेरिका, मैं इंडिया में रहता हूं, लेकिन फोन पे बात होती है हर 10 मिनट के बाद में, और जब खाते हैं पीते हैं तो वही खाते हैं जो हम लोगों को पसंद है एक दूसरे को, तो हम तीनों को अलग अलग चीजें पसंद है, तो तीनों को मैं लेकर के बैठता हूं, वो भी बैठते हैं वहां, वो भी वहां बैठता होगा, तो हम लोग एक साथ पीते हैं। अच्छा, कुछ दिन के बाद उसने क्या किया, 1 गिलास नहीं पिया, 2 पी लिए। तो ये बात सुनकर के मालिक को थोड़ा खेद हुआ और कहने लगे, भैया दुखी मत होइएगा, ये संसार सागर है, सबके साथ ये घटना घटती है। उन्होंने सोचा एक एक्सपायर कर गया, बाकी 2 रह गए ये लोग, तो उनका देख भाई हम ऐसा कोई घटना नहीं घटी, हम तीनों सुरक्षित हैं, हम कोई मरा नहीं है तीनों में, ना फिर आप 2 कैसे पी रहे हैं। बोले कारण ये है कि मैंने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया, आपने हिस्सा की नहीं पीता। मैं अभी अभी मैं चार नियम का पालन कर रहा हूं, बाकी दो लोगों के हिस्सा का मैं पी रहा हूं। तो इसका तात्पर्य ये नहीं हुआ कि उनसे साथ अभी भी अटैचमेंट है। आप इस्कॉन ज्वाइन कर लिए, भगवान का भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनके साथ आप आसक्ति बनाए रखो। वो प्रिय नहीं है। आप जप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आसक्ति उसके साथ जुड़ी हुई है, वो प्रिय नहीं है। करनी ऐसी होनी चाहिए जो पूरा जगत उसकी सराहना करे, और जगत सराहना उसी की करता है जो शास्त्र उक्त विधि से जीवन जीता है। शास्त्र के विरुद्ध जीवन जीने की कोई सराहना नहीं करता, उसकी तो प्राय निंदा ही होती है। माताजी ने अपने पति से कहा कि तुम हमेशा कोई अच्छा कर्म तो करो जिससे पूरा संसार तुम्हारी बड़ाई करे। आपने पढ़ा होगा जब आए थे इस जगत में, तुम जग हंसे तुम रोए, और करनी ऐसी कर चलो कि तुम हंसे जग रोए। उस समय तो ऐसी करनी तुमको करना चाहिए जब आप शुरुआत में आए तो पूरा जगत आपके लिए हंस रहा था और आप रो रहे थे, पता नहीं क्या वेदना थी। तो अब तो उसका बदला ले लो, 50-60-100 साल आप जिंदे इस दुनिया में रह रहे हैं, क्या बदला? बोले ऐसा कर्म करके जाओ जो लोग कम से कम तड़पते रह जाए, बिलकते रह जाए, और भला रोएगा कौन आपके लिए? कोई रोने वाला नहीं है। मैं तो पत्नी हूं इसलिए रोना पड़ेगा मुझे, अदरवाइज कौन है ऐसा? किसके साथ आपने व्यवहार अच्छा किया है जो रोएगा? हैं? भगवान की भक्ति आप किया नहीं, कोई अच्छा कर्म ऐसा समाज के लिए किया नहीं, किसी के आप प्रिय नहीं है, कौन रोएगा? और हृदय से तो कोई रोने वाला है नहीं तुमको, और मैं तो लोग दृष्टि से समाज को देखने के लिए रोना पड़ेगा। उनका बड़ी पगली है, तू सोच रही है केवल तू ही रोएगी, वो भी समाज की दृष्टि से रोएगी। हमारे पास तो रोने वाले ऐसे हैं जो हृदय से रोएंगे, हृदय फाड़ फाड़ के रोएंगे। न कैसे? राशन वाला भैया रोएगा, 3 साल से बिल नहीं दिया उसका। पान वाला भैया रोएगा, कितने साल हो गए अभी तक बिल नहीं दिया। तो इसका तात्पर्य ये नहीं हुआ कि जग रोए और तुम हंसते हंसते चले गए, ले 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 मैं तो गया, ये मतलब नहीं हुआ इसका। इसका मतलब ये हुआ जो आसक्ति है उसके उसको त्यागना, और ऐसा कर्म करना, कैसा कर्म है कि जो शास्त्र विधि में हो, जो शास्त्र के अनुरूप हो, ऐसा कर्म करने से हम लोग सभी के प्रिय होंगे और सभी लोग हमसे प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे, और हमारी भक्ति धीरे धीरे भगवान के प्रति आगाध होती चला जाएगी। और भगवान कह रहे हैं कि हे माँ, हर व्यक्ति, जो व्यक्ति मेरे ऊपर भरोसा करता है उसको मेरा प्रेम मिलता है। मदाश्रया कथा मृष्टा शणवंती कथयंतिश्चय, जिसको मुझ में पूरा भरोसा है, मेरी कथा सुनने में, मेरी कथा कहने में, जिसको अनन्य आनंद आता है, अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है, मेरे में पूरा कंप्लीट तरीका से मेरे ऊपर विश्वास है, उसी को भक्ति संभव है। बिन विश्वास भक्त नहीं, ते बिन द्रवय न राम, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। जब तक भगवान में विश्वास नहीं होगा, दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय जब तक नहीं होगा, तब तक भक्ति में अग्रसर नहीं होंगे। और विश्वास कहां से आएगा, कैसे होगा विश्वास? सत्संग से। साधु का सत्संग मिलना चाहिए, जो बोनाफाइड प्रमाणिक जो साधु है, परंपरा से जो साधु है, उस साधु का जब तक आपको सत्संग नहीं मिलेगा, तब तक आप भक्ति में अग्रसर नहीं होंगे। और साधु कौन है? अरे सबके सामने स्पष्ट है, प्रभुपाद जी परम साधु हैं, परम संत हैं। उनका सत्संग कैसे मिलेगा? उनकी किताबों से, उनके शास्त्रों से। और जब उनकी किताब पढ़ेंगे, साथ पढ़ेंगे, उन किताबों में क्या है? हरि कथा, हरि कथा ही तो है उनमें। जब हरि कथा करेंगे, हरि कथा पढ़ेंगे, तो हरि कथा से क्या होगा? मोह भाग जाएगा, आपके अंदर मोह नहीं रहेगा। जब धीरे धीरे पढ़ेंगे तो मोह भाग जाएगा, और मोह भाग जाने से क्या होगा? भगवान के चरणों में प्रेम होगा, अनुराग होगा भगवान के चरणों में। और जब अनुराग हो जाएगा, हे माँ, जब भगवान के चरणों में अनुराग हो जाएगा, यही तो भक्ति है। और भक्ति क्या है? यही भक्ति है कि भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम हो जाए, अनुराग हो जाए। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है, विन सत्संग न हरि कथा, ताबिन मोए न भाग, और मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। कहते हैं बिन सत्संग हरि कथा, बिना सत्संग के हरि कथा नहीं मिलती। हरि कथा तो सत्संग में ही जाके मिलेगी। और ताबिन मोह न भाग, और जब हरि कथा नहीं सुनेंगे तो तुम्हारा मोह नहीं भगेगा, नहीं जाएगा, मोह बना रहेगा। और मोह गए बिन राम पद, और जब तक मोह नहीं भगेगा ना तब तक क्या होगा, राम पद, भगवान राम के चरणों में, भगवान कृष्ण के चरणों में, कपिल देव भगवान के चरणों में क्या नहीं होगा, होए ना दृढ़ क्या अनुराग, दृढ़ अनुराग पैदा नहीं होगा माँ। तो इसलिए हमें क्या करना है, प्रभुपाद जी का शास्त्र पढ़ना है, प्रभुपाद जी किताबें पढ़ना है, प्रभुपाद जी जो नियम बना के गए उनको पालन करना है, तो हमारा निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। और ठीक उसी प्रकार से इस श्लोक में जो वर्णन किया है कि माँ देवहूति ने जब देखा उसी प्रकार से उन्होंने आचरण किया, क्या आचरण किया कि वो दिन में 3 बार स्नान करने लगी हैं, और इस तरह उनके जो घुंघराले जो बाल थे ना समय पे आते आते क्रम से भूरे पड़ गए, भूरे मीन्स सफेद होते होने लगे, और इस तपस्या कारण उनका शरीर भी धीरे धीरे दुबला हो गया। माँ देवहूति का शरीर 2 बार दुबला हुआ है, 1 बार हुआ था जब शादी होके आए और करदम जी अपने ध्यान में मस्त हो गए थे और उनकी तपस्या कर रही थी, उस समय भी एक कंकाल बना उनका शरीर, और आज भी उनका शरीर कंकाल जैसे बनता जा रहा है जैसा कि ये वर्णन आया है। तो हम लोगों को भक्ति करने के लिए तपस्या बहुत जरूरी है, जिस प्रकार से माँ देहूति आचरण में ला रही हैं। हरे कृष्णा। आप सभी लोग मेरी जो गलतियां हुई हैं उन पे तो ध्यान ना दें, जो कुछ गलती से कोई अच्छा शब्द निकल गया या कोई अच्छी चर्चा भगवान की हो गई उसे जरूर ग्रहण कर लेना। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस रोजी। ये प्रभुपाद जी का जब शास्त्र पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी ने जो जो लिखा है किताब में जब पढ़ेंगे ना तो धीरे धीरे ज्ञाता चला जाएगा। देखिए हम लोग खाना भी खाते हैं, तो अगर आपसे ही प्रश्न पूछा जाए कि खाना क्यों खाते हैं तो मेरे ख्याल में आप बताएंगे कि जीने के लिए, शरीर चलाने के लिए, लेकिन नहीं, खाना वास्तव में जो खाया जाता है ना वो जीने के लिए मत खाओ, खाने के लिए जियो। बहुत से लोग होते हैं खाने के लिए जीते हैं, नहीं सॉरी, जीने के लिए खाते हैं मैं उल्टा बोल गया। तो जो हम लोग हैं परिवार को एक समाज की दृष्टि में उनके साथ रह रहे हैं, लेकिन ठीक ऐसे ही रहना चाहिए जैसे जल में कमल, कमल जल में ही रहता है, उसी से पोषण करता है अपना, लेकिन जल का बिल्कुल भी असर कमल के ऊपर नहीं होता है। तो हम लोग यही गलती कर लेते हैं कि पूरे परिवार को अपना मान लेते हैं, जबकि हमको पक्का पता है, आचार्य लोग भी बता रहे हैं और हम देख भी रहे हैं, खुद प्रैक्टिकल भी है कि ये पूरा परिवार हमसे बिछुड़ना है, ये हमारा नहीं है, हम इनसे बिछुड़ के जाएंगे ही एक दिन। जब जब जो चीज छोड़ने वाली है, जो चीज हमसे कभी हमारा संग देने वाली है ही नहीं, तो उसका हम क्यों चिंतन करें, उसके साथ क्यों जुड़ के रहें। लेकिन समाज में रहना पड़ेगा, समाज में रहिए, जैसे जल को जल से बाहर कर दीजिए कमल को तो सूख जाएगा, लेकिन उसके साथ में कोई आसक्ति नहीं है, उसके खिल रहा है, फूल रहा है और उससे पोषण भी ले रहा है, तो ऐसे ही हमको रहना है। हम छोटे हैं, जब तक माँ का आश्रय नहीं लेंगे बड़े कैसे होंगे, बड़े नहीं होंगे तो भक्ति कैसे करेंगे, माँ बाप के सानिध्य नहीं रहेंगे तो अध्ययन कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, एजुकेशन प्राप्त करने के बाद ही तो शास्त्र पढ़ने की हमको क्षमता आएगी। इसका मतलब ये नहीं हम उसी में आसक्त हो जाएं, ये तात्पर्य है इसका। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की। हरे कृष्णा।